वास्तव में यह कुरान वह मार्ग दिखाता है जो सबसे ज्यादा सीधा है और ईमान वालों को जो अच्छे काम करते हैं शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरी चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। मैं हूं जहरा जैदी और कार्यक्रम में मेरा साथ दे रहे हैं हसन अब्बास। तो आइए पहले सूरह कसस की आयत क्रमांक 38 की तिलावत सुने।
فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين।
और फिरौन ने कहा, हे दरबारियों, मैं तो अपने अतिरिक्त किसी को तुम्हारा प्रभु नहीं जानता, लेकिन अधिक जांच के लिए हे हामान, तू मेरे लिए मिट्टी को आग लगा और ईंटें बना दे, फिर मेरे लिए एक ऊंचा मीनार बना कि मैं मूसा के ईश्वर के बारे में कोई खबर ले आऊं, और मैं तो निश्चय ही उसे झूठों में समझता हूं।
इससे पहले कहा गया कि फिरौन और उसके दरबार वालों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैगम्बरी को झुठलाया और उनके चमत्कारों को जादू टोना बताया। उन्होंने दावा किया कि उनके पूर्वज मूसा के ईश्वर को नहीं पहचानते थे और उसकी उपासना नहीं करते थे। यह आयत कहती है कि फिरौन ने हज़रत मूसा से मुकाबला करने और लोगों में उनके सत्य कथन के प्रभाव को रोकने के लिए आदेश दिया कि उसके लिए एक ऊंचा मीनार बनाया जाए ताकि वो और अन्य प्रतिष्ठित लोग उससे ऊपर जाएं और देखें कि ये मूसा जिस ईश्वर का दावा करते हैं वो आकाश में दिखाई देता है या नहीं।
वस्तुतः फिरौन ने लोगों को धोखा देने के लिए ये आदेश दिया था। वो लोगों से ये कहना चाहता था कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ और मेरे अतिरिक्त तुम्हारा कोई प्रभु नहीं है, लेकिन इसलिए कि लोग ये न समझें कि उसे हज़रत मूसा से निजी शत्रुता है और इसीलिए वो उनकी बात मानने से इनकार कर रहा है, उसने एक बड़ा मीनार बनाने का आदेश दिया ताकि उस जाति के प्रतिष्ठित लोग भी उसकी बात की सच्चाई को मान लें और अपनी आँखों से देख लें कि मूसा झूठ बोलते हैं और आकाश में कोई ईश्वर नहीं है।
इस आयत से हमने सीखा कि घमंड, अहम और वर्चस्ववाद की भावना सत्य को स्वीकार करने में रुकावट है।
वास्तविकता बयान करने की आड़ में लोगों को धोखा देना जनमत को बहकाने के भ्रष्ट नेताओं के पुराने हथकंडे हैं।
वर्चस्ववादी अपने आप को हर चीज का केंद्र और ध्रुव समझते हैं और स्वयं को धरती का स्वामी व शासक मानते हैं और किसी को कोई अधिकार देने के लिए तैयार नहीं होते। आज भी फिरौन जैसी बड़ी शक्तियां हैं जो अपने आप को संसार का सर्वे सर्वा समझती हैं।
आइए अब सूरह कसस की आयत क्रमांक 39 और 40 की तिलावत सुने।
واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين।
और फिर फिरौन और उसके सिपाहियों ने धरती में अकारण घमंड किया और समझ लिया कि उन्हें हमारी ओर लौटाया नहीं जाएगा, तो हमने उसे और उसकी सेना को पकड़ लिया और उन्हें नदी में फेंक दिया, तो देखो कि अत्याचारियों का कैसा अंजाम हुआ।
ये आयतें इस संसार में फिरौन और उसकी सेना के अंजाम की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, एक ओर सत्य के मुकाबले में उनकी ढिटाई और प्रलय का इनकार और दूसरी ओर लोगों पर अत्याचार इस बात का कारण बना कि हम उन्हें इसी संसार में दंडित करें और नील नदी में डुबो दें। जी हाँ, जो नदी उनके लिए जीवन, सत्ता और धन संपत्ति का कारण थी, वही उनके लिए कब्रस्तान में बदल गई और फिरौन और उसकी पूरी सेना उसमें समा गई।
ये आयतें फिरौन के शासन की दो विशेषताओं की ओर संकेत करती हैं जिनके कारण फिरौन और उसकी सेना तबाह हो गई। प्रथम घमंड और वर्चस्ववाद की भावना, जिसके कारण वे अपने आप को लोगों से उच्च व श्रेष्ठ समझते थे, और दूसरे कमजोरों और अपने अधीन लोगों पर अत्याचार व उनके स्वाभाविक अधिकारों का हनन।
इन आयतों से हमने सीखा कि सत्य और सच्चाई के मुकाबले में नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि इसका अंजाम तबाही के अतिरिक्त कुछ नहीं है।
प्रलय और प्रलोक में होने वाले कर्मों के हिसाब किताब पर आस्था न रखने से मनुष्य घमंड में ग्रस्त हो जाता है। अत्याचारियों व अहंकारियों के अत्याचारों व अपराधों का मूल कारण यही है।
ईश्वरीय दंड केवल परलोक में नहीं मिलेगा, बल्कि अहंकारियों को इसी संसार में अपमानित किया जाता है।
अगर इतिहास पर दृष्टि डाली जाए तो सभी अत्याचारियों का अंजाम एक जैसा ही दिखाई देगा।
आइए अब सूरह कसस की आयत क्रमांक 41 और 42 की तिलावत सुने।
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ
और हमने उन्हें ऐसा अगुआ बनाया है जो आग की ओर बुलाने वाले हैं, और प्रलय के दिन उन्हें कोई सहायता नहीं दी जाएगी। और हमने इस संसार में उनके पीछे धिक्कार लगा दी, और प्रलय के दिन भी वही कुरूप होंगे।
पिछली आयतों में संसार में फिरौन और उसकी सेना के अंजाम का वर्णन किया गया। ये आयतें कहती हैं कि प्रलय के दिन जब पापी नरक की ओर जा रहे होंगे तो फिरौन और उसके लोग उनके आगे आगे चलेंगे, और जिस प्रकार इस संसार में वे पापियों के अग्रणी थे, उसी तरह प्रलय में भी वे उनके अगुआ होंगे। वे लोग इस संसार में भी अपने काल के अत्याचारग्रस्त और अपने अधीन लोगों की धिक्कार के पात्र थे, और आगे भी ईमान वाले उन पर धिक्कार करते रहेंगे। उनका ये कुरूप और बुरा चरित्र प्रलय में साक्षात होगा, और वे अत्यंत बुरे चेहरे के साथ सबके सामने आएंगे।
इन आयतों से हमने सीखा कि जो लोग आज अपनी शक्ति और संभावनाओं पर अकड़ते हैं, प्रलय में वे असहाय होंगे, यहाँ तक कि उनमें दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप तक को बचाने की शक्ति नहीं होगी।
अत्याचारियों को धिक्कार करना और उनके विरुद्ध नारा लगाना ऐसी बात है जिसे ईश्वर ने वैध माना है।
जो लोग अपने सांसारिक जीवन में कुफ्र व पथ भ्रष्टता के आदर्शों का अनुसरण करते हैं, वे प्रलय में भी काफिरों और पथ भ्रष्ट लोगों के साथ रहेंगे और उन्हीं के साथ नरक में जाएंगे।
संसार में मनुष्य के बुरे कर्म प्रलय में उसके कुरूप होने का कारण बनते हैं।